आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 4 बड़े सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नगर निगमों को बिजली खर्चों में कमी लाकर बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक और नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक हुए पारित। BSNL ने कमाया 262 करोड़ रुपए का मुनाफा। 9 करोड़ से ज्यादा हुए उपभोक्ता। और विश्व तपेदिक दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, TB का उपचार संभव। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज जल, सौर, पवन और पर्यटन पर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य जल निगम की समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के रखरखाव व्यय को कम करने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। प्रदेश में 4 बड़े सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनकी मदद से नगर निगमों को उनके बिजली खर्चों में कमी लाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राजगढ़ पैलेस होटल एंड रिसोर्ट द्वारा मांगी गई करीब 19 एकड़ भूमि वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन दर पर दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। गौरतलब है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दर्ज खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगढ़ पैलेस पन्ना रोड पर स्थित है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि अंतिम दिवस भी हास परिहास, छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिरी क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। समापन भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तय समय तक सदन को चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार व्यक्त किया। समापन दिवस पर 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें पहला मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 एवं दूसरा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 रहा। हालांकि दोनों ही विधेयकों पर पक्ष विपक्ष के बीच खासी तकरार भी हुई। सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लेकर तो विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज श्री चौहान ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क समाप्त होने से किसानों की उपज बिना शुल्क के वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेगी और उन्हें अधिक मूल्य मिल सकेगा।
किसान को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। और अब ये फैसला किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल पाए।
केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। संसद सदस्यों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इसके अंतर्गत ओंकारेश्वर में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश की 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित की जा रही है।
आने वाले समय में हम सब, जैसे आपको ध्यान में आया कि 2 हमने टाइगर अभयारण्य बनाए, 2 सेंचुरी बना ली, एक ओंकारेश्वर सेंचुरी जो आने वाले समय में टाइगर रिजर्व की तरफ जाए। इसकी खास बात यह है कि यहाँ कोई एक भी गांव नहीं, ना कोई एक बस्ती, ये अपने आप में वैसी बहुत अच्छा सगम बन है।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः एक बार आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में पत्रकारों को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में BSNL ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उन्होंने बताया कि अभी हम 4G पर काम कर रहे हैं।
BSNL ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा, नेट प्रॉफिट किया है। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। अभी भी हम लोग 4G पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इस बात की खुशी भी है कि पहली बार बीएसएनएल के उपभोक्ताओं में भी एक नई ऊर्जा आई है। 8,65,00,000 हमारे उपभोक्ता थे जून 2024 के महीने में, आज हमारे 9,10,00,000 उपभोक्ता हैं, तो 55,00,000 उपभोक्ताओं की वृद्धि भी बीएसएनएल में हुई है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए गतिविधियां जारी हैं। इस क्रम में कल उज्जैन संभाग की 25 इकाइयों का भूमि पूजन होने जा रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि गत दिवस ओलावृष्टि से 400 से अधिक गांवों में फसल नुकसान की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। फसल नुकसानी का सर्वे कर शीघ्र आपदा राहत प्रदान की जाए। उन्होंने आज विक्रमादित्य ध्वज और पुस्तिका भारत का नववर्ष विक्रम संवत का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण अंचलों की गरीब वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्योपुर जिले में जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. सोहन कृष्ण मुदगल ने आकाशवाणी को बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2012 से लेकर अब तक 5,512 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 65,212 गरीब अति गरीब महिलाओं को जोड़ा गया है।
अब तक 5,100 सहायता समूहों को 20,000 रुपए के मान से रिवॉल्विंग फंड सक्रिय राशि प्रदान की गई है। साथ ही 3,220 सहायता समूहों को 1,00,000 रुपए के मान से CIF के रूप में राशि प्रदान की गई है और 4,520 सहायता समूहों को बैंक के माध्यम से TCL के रूप 250 करोड़ रुपए दिलाए गए हैं।
विश्व तपेदिक दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टीबी का इलाज संभव है। संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली और नियमित योग तथा व्यायाम से इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। जबलपुर जिला अस्पताल में विशेष निशुल्क शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 100 से अधिक क्षय रोगियों को स्वास्थ्य किट वितरित की गई। सागर जिले की 69 ग्राम पंचायतें टीबी से मुक्त घोषित की गई हैं। इन पंचायतों के सदस्यों को उनके सक्रिय योगदान के लिए आज प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंदसौर में जिला स्तर पर जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के द्वारा टीबी रोग के रोकथाम, बचाव, उपचार संबंधी प्रचार प्रसार किया गया। उज्जैन में 95 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया, जिसमें 16 सिल्वर के लिए 79 ब्रॉन्ज श्रेणी के लिए नामांकित हुई। सीहोर में भी कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत के सरपंच को सम्मानित किया। गुना जिले के 5 टीबी चैंपियंस को पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। जिले में अब तक 318 निक्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं। देवास जिले की कुल 98 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। रायसेन जिले की 173 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव व अन्य प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। और धार जिला क्षय अधिकारी डॉ. संजय जोशी ने आकाशवाणी को बताया कि इस साल के अंत तक हम पूरे जिले को टीबी मुक्त कर लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में आज से सीमा सुरक्षा बल के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। मंदसौर जिला ई ऑफिस कार्यप्रणाली में प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। अब सभी सहकारी विभाग ऑनलाइन होंगे और अब तक जिले में 134 कर्मचारियों की आईडी बनाई गई है। नीमच जिला मुख्यालय पर नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः 1 अप्रैल से सभी कार्य नवीन भवन में संचालित होंगे। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की खरीदी कल से 31 मई तक की जाएगी। झाबुआ जिले में परियोजनावार पोषण भी पढ़ाई भी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का कलेक्टर नेहा मीणा ने शुभारंभ किया। शिवपुरी जिले में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र व शासकीय आईटीआई संस्थान द्वारा 27 मार्च को 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। और बैतूल में कलेक्टर ने ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में आज से ही ई ऑफिस प्रणाली शुरू हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में सुबह 7:10 पर फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।